सबक नंबर 8। बाइबल को खुदा का कलाम कहा जाता है क्योंकि ये खुदा की वजाहत करने का तरीका है कि वो कौन है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम क्यों मौजूद हैं। ये पेचीदा है। अगर हम अपनी बाइबल को किसी तरतीब से ना खोलें और पढ़ना शुरू कर दें तो शायद हम उलझन में पड़ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि बाइबल दरअसल 66 अलग अलग किताबें हैं जो मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने तकरीबन 2000 साल के अरसे में लिखी हैं। बाइबल की किताबें खुदा के इल्हाम से लिखी गई हैं। इसके अलावा खुदा ने तस्दीक की कि किताबों के मंदरजात सच्चे हैं और वो उसकी तरफ से हैं। बहुत सी किताबों का मकसद बहुत ही मखसूस लोगों के ग्रुपों के लिए था। इब्तदाई कलीसिया ने इन किताबों को इकट्ठा किया और एक ही जिल्द में तरतीब दिया है जिसे हम बाइबल कहते हैं। बाइबल ये जाहिर करती है कि किस तरह खुदा ने पूरी तारीख में इंसान के साथ बातचीत की। बाइबल की किताबें मुख्तलिफ असनाफ में लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर जबूर की किताब गीतों और दुआओं की किताब है। ये इस्तारों से भरा हुआ है जो हमेशा लफ्जी तौर पर लेने के लिए नहीं होते हैं। अनाजील यीशु की जिंदगी पर मबनी एक तारीखी काम है। खत गलितियों और इफ्सियों की तरह इब्तदाई कलीसियाई रहनुमाओं की तरफ से मखसूस लोगों के गिरोहों को लिखे गए थे। पेशन गोइयों की किताबें हैं जैसे यसाया और मुकाशफा की किताब। एक तवील पेचीदा पेशन गोई जो असल में इब्तदाई मसीही कलीसिया के लिए लिखी गई थी। बाइबल को भी दो अहदनामों में तकसीम किया गया है। पुराना अहदनामा मसीह की पैदाइश से पहले लिखी गई किताबों से बना है और नए अहदनामा में मसीह की पैदाइश के बाद लिखी गई किताबें शामिल हैं। बाइबल की पहली 5 किताबें पेंटेज बनी इसराइल की तरफ से और उनके लिए लिखी गई थीं ताकि दुनिया के आगाज, उनसे खुदा के वादे और उसने उन्हें एक कौम के तौर पर कैसे बनाया। पूरी बाइबल में खुदा और लोगों के दरमियान मुख्तलिफ मुआयदे हैं। ये अहद कहलाते हैं। आज हम यीशु के अहद के तहत रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें रस्मी कवानीन की पैरवी करने की जरूरत नहीं है जिसकी तफसील अहबार या इस्तिस्ना जैसी किताबों में है। जो यहूदी लोगों के साथ खुदा के पुराने अहदों में से एक के तहत थे, रस्मी कवानीन यीशु की तरफ इशारा करने वाली अलामतों के तौर पर काम करते थे। इसलिए रस्मी कवानीन उनकी जिंदगी और मौत से मुकम्मल हुए। अगर आपका सर घूम रहा है तो एक लंबा सांस लें और फिर निकालें, फिर हौसला अफजाई करें क्योंकि आपको अभी ये सब समझने की जरूरत नहीं है। बाइबल ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको पढ़ना पड़ता है जैसा कि एक फर्ज है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको पढ़ने को मिलती है। इसका मकसद एक खुशी हासिल करना है, इसे पढ़ना, मुताला करना और जिंदगी भर कायम रहना है। ये एक ऐसा खजाना है जो आपके दिमाग और दिल को बदल देगा। बाइबल के कुछ हिस्सों को दूसरों के मुकाबले में समझना आसान है। हमारा मशवरा है कि आप किताब पैदाइश, बाइबल की पहली किताब और कम से कम 4 इंजीलों में से एक मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना पढ़ना शुरू करें। वहां से आमाल की किताब और नए अहदनामा के खतूत के साथ खुरूज की तरफ पढ़ना समझ में आ सकता है। रोमियो और इब्रानियों 2 किताबें हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल है, फिर भी वो यीशु के नए अहद और अहदनामा पुराने में पुराने अहद के दरमियान फर्क को समझने में मदद करती है। बाइबल में बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं। यहूदी लोगों के लिए तफसीली नस्ब और पेचीदा कवानीन के हिस्से भी हैं। ताहम आप यकीन कर सकते हैं कि बाइबल के हर हिस्से में एक अच्छा मकसद है और ये मुताला करने के लायक है क्योंकि बाइबल हमें समझने में मदद करती है। हम कौन हैं, वो कौन है और कैसे जीना है, यह हमें बुराई से बचाती है। लिहाजा इसके लिए आपको किसी भी चीज से होशियार रहना चाहिए जो आपको बाइबल पढ़ने से मुस्तकिल तौर पर रोकती है, आपका फोन, वीडियो गेम्स वगैरह। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपको एक खरीदनी चाहिए। स्मार्टफोन के लिए बेहतरीन बाइबल ऐप यू वर्जन बाइबल ऐप है। ये आपको शुरू करने में मदद के लिए तर्जुमे, ऑडियो बाइबल, सालाना पढ़ने के मंसूबे और अकीदत की सबसे बड़ी सफ पेश करता है। اگر آپ بغیر کسی منصوبے کے پوری بائبل کو پڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ ایک سال میں پوری بائبل پڑھنے کے منصوبے ہیں، اور یہ مددگار ہیں کیونکہ ان سے آپ کو روزانہ چھوٹے چھوٹے حصے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں، لیکن خدا کے کلام کا مزہ لینا سیکھنے پر توجہ مرکوز کرنا بہتر ہے۔ یہ حوصلہ افزائی اور حکمت کا ایک مستقل ذریعہ ہے، اور آپ کی مسیحی زندگی گزارنے کی صلاحیت براہ راست اس بات سے منسلک ہے کہ آپ بائبل کو اپنے دل اور دماغ کے ساتھ کتنی مستقل مزاجی سے منسلک کرتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ بائبل کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس سے پوچھیں کہ وہ اس کے احکام کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاگو کرنے میں مدد کرے۔ اسے پڑھنے اور سننے میں غفلت نہ کریں۔ اپنے آپ کو اسے بھولنے نہ دیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک قاری ہیں، لیکن بائبل جلد ہی آپ کی سب سے قیمتی ملکیت بن جائے گی، کیونکہ یہ آپ کے لیے خدا کے الفاظ ہیں۔ گہرے طور پر دیکھیں، ایک بائبل حاصل کریں، ایک سال میں بائبل پڑھیں، اور اسے پڑھنے کے منصوبہ پر عمل شروع کریں۔